हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद आठवां अध्याय श्लोक संख्या 15, 16 एंड 17। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान त्रिमिरंदस्य ज्ञानंजनाशलाकय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्व पदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भक्त त्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती युत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकम्, भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांता श्रीराधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचनं गौरंगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। पहला स्कंद आठवां अध्याय जिसका शीर्षक है महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। श्लोक नंबर 15। इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सूत गोस्वामी शौनक मुनि को बता रहे हैं, यद्यप्यस्त्रं ब्रह्म शिरः तमोघं चाप्रतिक्रियं वैष्णवं तेज आसाध्य समशं यद्भृगुत्वः। यद्यप्यस्त्रं ब्रह्म शिरः तमोघं चाप्रतिक्रियं वैष्णवं तेज आसाध्य समशां यद् भृगुत्वः। यद्यप्यस्त्रं ब्रह्म शिरः त्वमोघं चाप्रतिक्रियं वैष्णवं तेज आसाध्य समशां यद् भृगुत्वः। भृगुद्वः यानी हे भृगुवंश की शान। ओ शौनिक मुनि को कहते हैं हे शौनिक मुनि, क्योंकि जब भगवान ने अपने अश्वत्थामा के आते हुए ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ में शांत कर दिया, जो बाण आ रहे थे पांडवों की ओर उनका भी शमन कर दिया, और साथ साथ में वो उधर रथ पर भी बैठे हुए थे, तो भगवान तो परम योगेश्वर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ब्रह्म अस्त्र जो है उसकी महिमा बताते हुए उन्होंने पहले कहा था सूत गोस्वामी के, ब्रह्म अस्त्र अपने लक्ष्य को भेदे बगैर कभी भी वापस नहीं आता है। तो यहाँ पर वही आश्चर्य हो रहा है उनको, क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र अगर उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए या पांडव वंश को नष्ट करने के लिए आया था, तो आपने तो कहा था यद्यप्यस्त्रं ब्रह्म शिरः अमोघम, कि ब्रह्म जो अस्त्र होता है वो अमोघ होता है, वो तो कभी भी अपने लक्ष्य को भेदे बगे वापस आता नहीं है, और चा प्रतिक्रियम और उसका कोई प्रतिकार भी नहीं कर सकता, जिसका निवारण भी नहीं किया जा सकता है। फिर कैसे आप कह रहे हो अब कि उसका निवारण हो गया, प्रतिक्रिया हो गई उसकी? इस कथा को श्रवण करके सौनिक आदि जो ऋषि थे वो आश्चर्यचकित हो गए, कहने लगे ब्रह्मास्त्र संतुष्ट हो गया, नष्ट हो गया, चला गया, ये हो कैसे सकता है, जबकि आपने पहले बोला कि ब्रह्मास्त्र अपने लक्ष्य को भेदे बगैर कभी नहीं आता। तो फिर वो और ब्रह्मास्त्र को प्रतिक्रिया करने के लिए क्या ब्रह्मास्त्र की आवश्यकता होती है? तो फिर आपने बोला था ना कि कोई दूसरा अस्त्र उसको विफल नहीं कर सकता, चार प्रतिक्रिया दूसरा कोई अस्त्र भी उसको विफल नहीं कर सकता, फिर सुदर्शन चक्र से कैसे विफल हो गया? ये तो बहुत आश्चर्य वाली बात आप बता रहे हो। लेकिन आगे कहते हैं वैष्णवम तेज आसाध्य। आसाध्य किसका तेज? यानी कि जब उनके सामने एक तेज आया, कौन सा? वैष्णव यानी भगवान विष्णु का तेज, भगवान श्री कृष्ण का तेज। तो भगवान विष्णु का तेज क्या है? सुदर्शन चक्र जब ब्रह्मास्त्र के सामने आया तो समशाम यद, तो फिर वो क्या हो गया? शांत पड़ गया। तो आपको आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी स्वयं क्या कहते हैं, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी स्वयं जिस भगवान की परस्तिश करते हैं, जिस भगवान की भक्ति करते हैं, यदि वो सामने आ जाए तो ब्रह्मास्त्र तो ब्रह्मा जी का अस्त्र है, वो भला कैसे भगवान के सामने और अधिक देर तक ठहर सकता है? अनुवाद, हे शौनक, यद्यपि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया परम ब्रह्मास्त्र अमोघ था और उसका निवारण नहीं हो सकता था, लेकिन विष्णु अर्थात श्री कृष्ण के तेज के समक्ष वह शांत पड़ गया और व्यर्थ हो गया। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि ब्रह्म ज्योति भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, जो श्लोक अध्याय 14 में भगवान अंतिम श्लोक में बताते हैं कि ब्रह्म तेज जो है वो मेरे आश्रित है, मैंने उसको, मेरे से ही निकलता है, मैं ब्रह्म तेज से नहीं निकला हूं। मेरा जो, मेरी जो सुंदरता का नूर है, जो रोशनी है, वो है ब्रह्म तेज। दूसरे शब्दों में ब्रह्म तेज भगवान की किरणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं। जैसे सूर्य से किरणें निकलती हैं, उसी तरह से ब्रह्म भगवान, क्योंकि इतने भगवान के अंदर इतना तेज है कि ब्रह्म तेज भगवान के किरणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जिस प्रकार के सूर्य, सूर्य किरणों किरणें सूर्य के गोले से ही निकलती है, अतएव यह ब्रह्मास्त्र भी यद्यपि भौतिक रूप से अमोक था, किंतु भगवान के परम तेज से पार नहीं जा सका। अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र श्री कृष्ण द्वारा अपनी शक्ति के बल पर निरस्त एवं व्यर्थ कर दिया गया, अर्थात उन्हें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ी, क्योंकि वे ब्रह्म हैं। यानी कि यहाँ पर जो शौनक आदि ऋषि इतना आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं, तो उनको सांत्वना देते हुए कहते हैं सूत गोस्वामी, कहते हैं अत्यंत सुंदर शब्द है श्लोक नंबर 16 में, देखिए, माम संस्थाहि तदाश्चर्यम् सर्वाश्चर्यम् मयेच्युते य इदं मायया देव्या सृजत्यवति हन्त्यज। तदाश्चर्यम् सर्वाश्चर्यमयेच्युत य इदं मायया देव्या सृजत्यवति हन्त्यज। मा संस्थाहि तदाश्चर्यम् सर्वाश्चर्यमयेच्युते य इदं मायया देव्या सृजत्यवति हन्त्यते हन्त्यज। माम मनस्था येतद आश्चर्य, माम माम मतलब मत करो, मनस्था मतलब सोचो भी मत, ये निश्चय ही एतद इस यह सब आश्चर्य है। आप सूत जी कहते हैं आपको सोचना भी नहीं चाहिए कि ये कोई आश्चर्य, ये तो कोई आश्चर्य है ही नहीं, ये इसमें आश्चर्य की क्या बात है, आपको इसमें आश्चर्य करना ही नहीं चाहिए। माम मनस्थाये तदाश्चर्य, क्यों? क्योंकि सर्वाश्चर्यम मयेच्युत, समस्त आश्चर्यों से परिपूर्ण जो भगवान श्री कृष्ण है, कृष्ण यानी जितना आश्चर्य संभव है वो कृष्ण कर सकते हैं। आश्चर्य का क्या मतलब है जानते हो? मतलब अलौकिक घटना करने की शक्ति, ऐसा ऐसी घटना जिसके बारे में जीव का मस्तिष्क सोच भी नहीं सकता। जैसे आश्चर्य शब्द भगवान ने भगवत गीता में आत्मा के विषय में कहा गया है, आश्चर्यवत कश्चित के कुछ आश्चर्य भगवान ने गीता में 2.29 में भगवान ने कहा, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनम् अन्यः श्रोति श्रुत्वाप्येनम् वेदन चैव कश्चित्। कि आत्मा को कोई आश्चर्य से देखता है, कोई उसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझते कि इतनी छोटी सी आत्मा इतने बड़े हाथी के शरीर को भी चलाती है, एक छोटे से एटम को भी चलाती है, इतना बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर छोटी सी आत्मा जब इतना सारा कार्य, जो भगवान का इनको निगरानियां मतलब काउंट कर काउंट भी नहीं किया जा सकता, भगवान समुद्र है, उसकी छोटी सी बूंद भी आश्चर्य कर सकती है, तो फिर वह भगवान जो कि समुद्र है वो क्या नहीं कर सकते। भगवान यदि कुछ कर रहे हैं, ये ब्रह्मास्त्र को शांत करना तो कोई आश्चर्य हो ही नहीं सकता। संपूर्ण आश्चर्य, जितना आश्चर्य संभव है, वो कृष्ण कर सकते हैं। कृष्ण समुद्र के द्वारा वो जगत को जला सकते हैं, सूर्य और अग्नि के द्वारा बर्फ बना सकते हैं, वो अमृत से सबको मार सकते हैं और विष छिड़क कर सबको जिंदा कर सकते हैं। अद्भुत शक्ति है भगवान के अंदर, सारी वस्तुओं को शक्ति प्रदान करने वाले भगवान हैं। तो उन्होंने छोटा सा कार्य कर दिया तो उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। और सबसे आश्चर्य, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, आगे कहते हैं, य इदम मायया देव्या सृजत्यवति हन्त्यज य इदम मायया। ये तो भगवान की माया जो है, जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, उस माया के द्वारा भगवान क्या करते हैं, सृजत्यवति हन्त्यज, भगवान का सृजन करते हैं, भगवान उसका, अवति का मतलब है पालन करते हैं, और हंति यानी कि उसका संहार करते हैं, हाथ भी नहीं लगाते। माया, भगवान की माया शक्ति जो है, केवल भगवान संकल्प करते हैं, केवल इच्छा करते हैं, खेल खेल में इस एक ब्रह्मांड को नहीं, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों को। आपने कभी देखा, हम सुनते हैं जैसे शास्त्र क्या कहता है, कारण दक्षाय विष्णु श्वास लेते हैं तो उनकी श्वासों से अनेक अनेक ब्रह्मांड निकलते हैं। ब्रह्मांड का मतलब पता है, जिस एक ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं, है ना, 14 लोक पृथ्वी सेंटर में होती है और ऊपर, इससे करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि गर्भ दक्षाय विष्णु ब्रह्मांड निकलता है उसके बाद अंदर जाते हैं, फिर किसी आर्किटेक्ट को लगाते हैं कि भाई आप ऐसा करना, एक नीचे वाला लोक ऐसा होना चाहिए, उसके बाद वाला लोक ऐसा होना चाहिए, इसके अंदर इतने कमरे होने चाहिए, यहाँ पर है ना गार्डन होना चाहिए, यहाँ पर ये होना चाहिए, यहाँ पर समुद्र होना चाहिए, यहाँ पहाड़ होने चाहिए, या फिर वो स्वयं ही हथौड़ा लेकर ठक 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 करना शुरू हो जाए। और जिस तरह से हम, क्या होता है, हम संसार में एक घर बनाते हैं तो एक छोटा सा घर होता है, वो अगर ब्रह्मांड के साथ उसका कंपेयर किया जाए तो नथिंग है, लेकिन फिर भी उसको बनाने के लिए कितनी कितनी प्लानिंग करनी पड़ती है। पहले मैप बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं, उसके बाद यहाँ बेडरूम होना चाहिए, यहाँ ड्राइंग रूम होना चाहिए, यहाँ किचन होना चाहिए, यहाँ पर गेस्ट रूम होना चाहिए, और यहाँ पर ये दरवाजा होना चाहिए, यहाँ खिड़की होनी चाहिए, यहाँ गैलरी होनी चाहिए, यहाँ वॉशरूम, कितनी प्लानिंग करनी पड़ती है। बिल्डर्स लोग जो बिल्डिंग बनाते हैं वो कितना कितना सामान जुटाते हैं उसको, और कितनी कितनी प्लानिंग करनी पड़ती है। लेकिन ये भगवान की माया शक्ति, माया शक्ति कोई व्यक्ति नहीं है, ये तो भगवान की शक्ति है, बस भगवान का बल है, भगवान का पावर है, संकल्पना है। और वो क्या करते हैं, इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड को, या इदम मायया देव्या, भगवान की इतनी दिव्य माया शक्ति इतनी दिव्य है कि संकल्प मात्र से भगवान केवल इच्छा करके क्या करते हैं, सृजत्यवति हन्त्यतः, इस पूरे ब्रह्मांड को, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को सृजन करते हैं, उसके बाद उनकी पालन भी करते हैं और समय आने पर संहार कर देते हैं। तो ये कितना बड़ा आश्चर्य है, इसके सामने ये आश्चर्य तो कुछ भी नहीं है। तो भगवान के कार्यों पर, भगवान के इन कार्यकलापों पर आश्चर्य नहीं, बल्कि भगवान की महानता को श्रवण करके आनंद लो। अनुवाद, हे ब्राह्मणों, इसे गुह्य तदा अच्युत भगवान के कार्यकलापों में विशेष आश्चर्यजनक मत सोचो, वे स्वयं अजन्म होकर अपनी दिव्य शक्ति से समस्त भौतिक वस्तुओं का सृजन पालन तथा संहार करते हैं। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे कि जीवों के नन्हे मस्तिष्क के लिए भगवान के कार्यकलाप सदैव अकल्पनीय होते हैं, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं, लेकिन उनके सारे कार्य हमारे लिए आश्चर्यजनक लगते हैं, अतएव वे सदा हमारी कल्पना से परे बने रहते हैं, क्योंकि हमारे पास बुद्धि इतनी सीमित है कि हम हमारी सीमित सी बुद्धि से हम केवल सीमित विचारधारा ही हमारी हो सकती, ऐसा कैसे हो सकता। मतलब कुछ कुछ बातें भगवान के विषय में सोच कर ऐसा लगता है 7 साल का बच्चा पहाड़ को, इतने बड़े पहाड़ को 7 दिन तक अपनी छोटी उंगली के नाखून के ऊपर खड़ा करके खड़ा रहा, ऐसा कैसे हो सकता है। इतने बड़े बड़े अजगर को खालिया नाक के ऊपर नाच करते भगवान। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात क्या लगती जानते हो, 16,108 पत्नियों के साथ रहना कैसे संभव है, सबको संतुष्ट करना कैसे संभव है, एक साथ सबके साथ रहना। लेकिन क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी सीमित है तो भगवान के ये कार्यकलाप हमारे लिए हमेशा आश्चर्यजनक लगते हैं, अतः वे सदा हमारी कल्पना से परे बने रहते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है तथा परम पूर्ण है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान शत प्रतिशत पूर्ण है। पूर्ण ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो चाहे कोई भी कार्य करते हैं, चाहे वो इस संसार में रहकर कर रहे हों या भौतिक जगत में आध्यात्मिक जगत में, वो 100% 100% पूर्ण है। लेकिन अन्य लोगों में, यथा अभी लोग बोल गया, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं नारायण ब्रह्मा शिव देवता गण तथा अन्य सारे जीवों में ऐसी पूर्णता का कुछ प्रतिशत ही पाया जाता है। भगवान परिपूर्ण है और बाकियों में ना सीरीज में ब्रह्मा शिव और इस तरह से कुछ कुछ प्रतिशत उनके अंदर पाया जाता है। कोई ना तो उनके तुल्य है और ना ही उनसे बड़ा है, वे अद्वितीय हैं। भगवान की तुल्य कोई नहीं हो सकता। अर्जुन कहते हैं न तत् समः, उनके तुल्य कोई नहीं सकता। अधिको को तोन्या, तो फिर उनसे बढ़कर भला कोई कैसे हो सकता है। तो भगवान जो है वो अपनी अद्भुत शक्तियों के द्वारा कुछ भी कर सकते हैं। तो ये कोई बड़ा आश्चर्य नहीं था कि उन्होंने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को सुदर्शन चक्र से और एक ही साथ साथ उसके 5 बाणों को जो पांडवों की ओर आ रहे थे उनको शमन किया, और साथ साथ वो रथ पर बैठे हुए थे और साथ साथ वो उत्तरा के गर्भ में भी प्रवेश किए। तो उस समय माता कुंती और पांडव जो रथ के साथ ही खड़े थे, तो जब माता कुंती ने ये घटना देखी तो उनको अनुभव हुआ कि भगवान कितना स्नेह करते हैं मेरे पुत्रों से, मुझसे। तो उनको ये रियलाइज हो रहा था कि हालांकि मेरे पुत्रों ने भगवान से प्रार्थना भी नहीं की, रक्षा की मांग भी नहीं की, वो तो बस भगवान के अंदर ध्यान लगाकर भगवान को विदा करने के लिए यहाँ पर खड़े थे। लेकिन जिस प्रकार माँ अपने बच्चे की सहायता करती है, उसी तरह से भगवान ने मेरे बच्चों की सहायता की। कुंती महारानी जो है वो सारे दृश्यों को देख रही थी कि भगवान किस तरह से रथ पर बैठे हुए थे, किस तरह से उन्होंने पांडवों की रक्षा की और साथ साथ में उत्तरा के गर्भ में भगवान का प्रवेश भी देखा। और इस दृश्य को देखकर महारानी कुंती के हृदय पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और अपने पुत्रों के प्रति भगवान का स्नेह देखकर उसके मन में कुछ कहने का उल्लास उमंग आ गई। और अब वो कृष्ण को जाने नहीं देना चाहती है क्योंकि कृष्ण जाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि जाते जाते भगवान की ये इतनी बड़ी विपत्ति उनके ऊपर आई और वो सोचने लगी कि यदि इस समय कृष्ण नहीं होते तो आज ये कौरव वंश जो है वो समाप्त हो गया होता। कृष्ण एकमात्र कृष्ण का सानिध्य ही है जो कि मुझे मेरे बच्चों को हमारे परिवार को सुरक्षित रख सकता है। तो कुंती महारानी कृष्ण के गुणों का वर्णन करती है। आगे सुत गोस्वामी कहते हैं श्लोक नंबर 17, ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्ताय आत्मजय सह कृष्णया प्रयाणाभि मुखं कृष्णम् इदमाह पृथा सति। ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्तः आत्मजय सह कृष्णया प्रयाणाभि मुखं कृष्णम् इदमाह वृथा सति ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्तये आत्मजय सह कृष्णया प्रयाण विमुखं कृष्णम् इदमाह पृथा सति ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्त है। ब्रह्म तेजो मतलब ब्रह्मास्त्र का तेज विनिर्मुक्त है यानी बचकर। अब क्योंकि ब्रह्मास्त्र के तेज से मुक्त हो गए थे कौन? आत्मजय उसके पुत्र जो कुंती के पुत्र जिनकी ओर ब्रह्मास्त्र आ रहा था वो अब उससे बच गए थे और वो भी वहां पर खड़े थे सह कृष्णया। कृष्णया मतलब वहां पर द्रौपदी भी खड़ी थी और वहां पर प्रयाणाभिमुखम कृष्ण यानी कृष्ण भी खड़े थे। लेकिन क्यों खड़े थे? प्रयाणाभिमुखम जाने के लिए, वो जाने के लिए तैयार थे। और इदमाह पृथा सती और भगवान को ऐसे जाते हुए इदम आह इस तरह से कहा किसने? पृथा सती ने। आज कुंती महारानी भगवान को कुछ कहने जा रही है। वास्तव में ये कुंती महारानी की जो प्रार्थनाएं हैं श्री प्रभुपाद जी ने लॉस एंजलिस में इनके ऊपर प्रवचन किया था 24 डेज का प्रवचन 24 दिन का। यानी अगर केवल इन कुंती महारानी के प्रार्थनाओं के ऊपर यदि हम बात करें तो 2 हफ्ते लग सकते हैं। लेकिन अब हम क्योंकि श्लोक के निकट निकट चलेंगे कि किस तरह से कुंती महारानी खड़ी है भगवान जाने के लिए तैयार है और उनके साथ सारे पांडव भी खड़े हैं, द्रौपदी खड़ी है और कुंती महारानी कह रही है बात कृष्ण इदमाह ऐसा कह रहे हैं। कौन कह रही है? पृथा सती। यहाँ पर सूत गोस्वामी कुंती महारानी को सती कहकर संबोधित करते हैं। तो हम अनुवाद इस प्रकार ब्रह्मास्त्र के तेज से बचकर भगवान की भक्त सती कुंती ने अपने 5 पुत्रों तथा द्रौपदी सहित घर के लिए प्रस्थान करने को उद्यत कृष्ण को इस प्रकार संबोधित किया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति के कारण कुंती को यहाँ पर सती कहा गया है। अब उसके मन को भगवान की आगे दी हुई स्तुति में व्यक्त किया जाएगा। भगवान का सच्चा भक्त कभी अन्य किसी से यहाँ तक के संकट से उधार के लिए भी किसी जीव या देवता से दया की भीख नहीं मांगता। यही विशेष दया लगातार सारे पांडव कुल में बनी रही। वे कृष्ण के अतिरिक्त किसी को नहीं जानते थे, अतएव कृष्ण भी सभी परिस्थितियों में उनकी हर प्रकार से सहायता करने को उद्यत रहते थे। यह भगवान का दिव्य स्वभाव है। वे भक्त की भर्त्सना को पुरस्कृत करते हैं। क्षमा, वे भक्त की निर्भरता को पुरस्कृत करते हैं। यानी कि भले ही हमारे ऊपर कोई भी संकट आ रहा है, कोई भी मुश्किल है, कोई भी विपत्ति है, तो भी भक्त का क्या कर्तव्य है कि भगवान से प्रार्थना करे कि भगवान आप क्योंकि बेहतर जानते हो इसलिए आप जो अच्छा है वो कीजिए, जो श्रेष्ठ। वास्तव में जो शुद्ध वैष्णव होता है वो यही प्रार्थना करता है कि आप जो हमारे लिए श्रेष्ठ कर रहे। अर्जुन ने क्या कहा कि यह श्रेय यह सा निश्चितम, जो मेरे लिए श्रेष्ठ है वही बताइए। तो भक्त जो है वो वास्तविक उसकी प्रार्थना ये होती है कि भगवान आपको जो अच्छा लगता है वैसा करो। लेकिन यदि हम संसार में देखते हैं कोई संकट आता है तो उससे बचाने के लिए भी यदि हम किसी के पास जाते हैं, हाथ फैलाते हैं, तो केवल भगवान के पास ही जाना चाहिए, जैसे कि पांडव लोग करते हैं, कर रहे हैं शुरू से लेकर। और यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं वे भक्त की निर्भरता को पुरस्कृत करते हैं। वो देखते हैं कि भक्त जो है वो मुझ पर डिपेंडेड है तो भगवान जो है वो उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपूर्ण जीवों या देवताओं से सहायता की याचना ना करे अपितु भगवान श्री कृष्ण से याचना करे, क्योंकि वे अपने भक्तों को बचाने में सक्षम है। और किसी के पास जाकर अपना रोना। आजकल हम देखते हैं कि जहां से जीव को पता चलता है कि यहां से मुझे फायदा मिलेगा, उसको अपना भगवान कहकर उसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। पता चलेगा कि वो बेटा देता है, हाँ भाई उसकी अगरबत्ती शुरू कर दो। उसको पता चलेगा उससे उसकी पूजा करने से धन मिलता है, हाँ भाई उसकी पूजा करना शुरू कर दो। लेकिन वास्तव में आपका कल्याण केवल भगवान की भक्ति करने से होगा, क्योंकि वो वास्तविक कष्टों से आपको बचाने में सक्षम है। कोई कितना ही बड़ा मनुष्य हो, कोई कितना भी बड़ा देवता हो, आपको चार चीजों से नहीं बचा सकता। जन्म लेने से कोई नहीं बचा सकता, कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, किसी को जन्म के दुख से नहीं बचा सकता, किसी को बूढ़ा होने से नहीं बचा सकता, किसी को बीमार होने से नहीं बचा सकता, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो आपको मृत्यु से बचा सके। लेकिन भगवान ऐसे हैं, भगवान सक्षम है आपके समस्त कष्टों का निवारण करने के लिए, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक क्लेशों से आपको छुटकारा दिलाने के लिए। केवल भगवान की शरण में जा, और भगवान की शरण में जाकर भगवान से प्रार्थना यदि हम करेंगे तो भगवान जो है वो भक्त की निर्भरता को पुरस्कृत करते हैं। इसलिए आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, सच्चा भक्त भी भगवान से सहायता, सच्चा भक्त भी भगवान से सहायता नहीं मांगता, किंतु भगवान स्वेच्छा से सहायता करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। सच्चे भक्त को पता है कि भगवान खुद ही करेंगे। भगवान, मैं भगवान से प्रेम करता हूँ तो डेफिनेटली भगवान मुझसे प्रेम करते हैं, वो मुझे क्यों हानि पहुंचाएंगे। इसलिए जब भगवान देखते हैं ये यथाम प्रपद्यंते वो मुझ पर निर्भर है और मुझ पर डिपेंडेड है, वो जानता है कि मैं उसका बुरा नहीं करूंगा, तो क्या भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है? क्या भगवान अच्छा नहीं करेंगे? तो अवश्य करेंगे। आज यहाँ पर इससे आगे जो है वो कुंती महारानी की प्रार्थना स्टार्ट हो रही है, और ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि एक भक्त को प्रार्थना, वास्तव में स्टोरीज जो होती है ना भागवतम में, वो तो हम माना इतिहास समझने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन इसमें जो भक्तों का भाव है उनको पढ़कर हमारे हृदय में जो भक्ति उत्पन्न होती है ना, वास्तविक लक्ष्य वही है। शास्त्र अध्ययन करने का वास्तविक लक्ष्य क्या है कि हम कैसे कृष्ण के प्रेम में उन्नति हमें हो, कैसे हम कृष्ण से और अधिक प्रेम और अधिक स्नेह और भौतिक वस्तुओं की ओर से हमारा आकर्षण समाप्त हो। तो ये कैसे होगा? जब हम यहाँ भागवतम में लिखे हुए भक्तों के उद्गार को सुनेंगे, भगवान के प्रति उनके जो शुद्ध हृदय से निकली हुई प्रार्थनाएं हैं उनको यदि हम समझते हैं, तो ऐसे कहते हैं ना कि भागवतम पढ़ने से क्या होगा, सद्यो हृदय वरुद्य तेत कृति भी, आपके हृदय के अंदर भगवान विराजमान हो जाएंगे। तो स्टोरीज पढ़ने से मतलब समझ में आएगा, लेकिन उसमें जो भक्तों की जो प्रार्थनाएं हैं और भक्तों का जो भगवान के साथ आदान प्रदान है उसको समझने के बाद हृदय के अंदर भगवान आकर विराजमान होते हैं। तो आज यहाँ पर सूत गोस्वामी कहते हैं इदम आह प्रथा सती, क्योंकि भगवान की सबसे बड़ी भक्तनी थी, सती थी वो, इसलिए वो ऐसा कह रही हैं। तो आज कुंती महारानी की प्रार्थनाओं को श्रवण करने से पहले हम कुंती महारानी को के विषय में थोड़ा परिचय में आपको देना चाहती हूँ कि कुंती महारानी वास्तव में थी कौन। वास्तव में कुंती महारानी बहुत ही सौभाग्यवती कन्या थी, वो बहुत ही गुणवती थी। सूरसेन को जानते हैं आप, वासुदेव के पिता। वासुदेव कौन है? भगवान श्री कृष्ण के पिताजी वासुदेव हैं। उनके पिता जो सूरसेन हैं, उनके एक मित्र थे, उनके मित्र का नाम था कुंती भोज। कुंती भोज अत्यंत ही बहुत ही न्याय वाले राजा थे, बहुत ही अच्छे मित्र थे सूरसेन महाराज के, परंतु उनको बहुत दुख था क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। तो सूरसेन महाराज ने कहा कि आप इतने दुखी रहते हो, मैं आपको वचन देता हूँ कि जो मेरी संतान इस बार पैदा होगी वो मैं आपको दूंगा। अब पहले उनके वासुदेव पुत्र पैदा हुए और वो तो पहले ही थे उनके, और बाद में उनकी पुत्री उत्पन्न हुई, पृथा उनका नाम रखा। पृथा किसकी बेटी थी? सूरसेन महाराज की। बहन किसकी थी? वसुदेव की बहन थी, जो भगवान के पिताजी हैं उनकी बहन थी। अब पृथा महारानी जब पैदा हुई तो फिर वो बहुत ज्यादा गुणवती थी, उन्होंने
मतलब शूरसेन ने अपनी इन पुत्री को कुंती भोज जो कि उनके मित्र थे उनको दे दिया, क्योंकि उनको वचन दिया था ना कि मैं इस संतान को आपको दूंगा। और इसलिए पहले उनका नाम वृथा था, लेकिन क्योंकि कुंती भोज की पुत्री कहलाए बाद में, इसलिए उनको कुंती कहा गया, कुंती भोज की। वो बचपन से ही बहुत गुणवती थी। वासुदेव जी जो भगवान के पिता थे, वो उनके भाई थे, साक्षात कृष्ण जिनको बुआ कहते थे। बहुत ही सुंदर उनके गुण थे। और उसका विवाह उस समय के सबसे बड़े सम्राट जो पांडव थे, वास्तव में उस समय सबसे बड़े सम्राट थे, उनका विवाह उनके साथ हुआ। लेकिन विवाह से पहले वो जब कुमारी कन्या थी, तब साधुओं की सेवा करने में उनकी बहुत रुचि थी। दुर्वासा जैसे मुनि को भी उन्होंने संतुष्ट कर दिया था, वैसे दुर्वासा मुनि को संतुष्ट करना बहुत ज्यादा कठिन था, लेकिन उनकी सेवा से वो बहुत संतुष्ट हो गए थे। एक बार दुर्वासा ऋषि उनके यहाँ पर आए थे और बहुत बहुत सेवा की थी कुंती महारानी ने उनकी। तो जब दुर्वासा मुनि ने उनकी भविष्य को देखा, कुंती महारानी को, तो उन्हें पता चला कि आगे चलकर इनको संतान की वृद्धि करने में बहुत बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि अब बाद में आगे हम पढ़ेंगे क्या हुआ। लेकिन भविष्य को देखने के बाद, क्योंकि दुर्वासा ऋषि त्रिकालदर्शी थे, तो उस समय कुंती महारानी को एक विद्या दी, एक मतलब ऐसा मंत्र दिया जिसको देवहूति विद्या कहा जाता था। देवहूति विद्या मतलब देवताओं को बुलाने वाली विद्या, ऐसा मंत्र जिसको आप यदि पढ़ोगे तो देवता फौरन से प्रस्तुत हो जाएंगे। कुंती महारानी ने कहा, नहीं महाराज, मुझे केवल आप आशीर्वाद दीजिए, मुझे किसी विद्या या मंत्र की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर बहुत ज्यादा आग्रह करने के बाद, जब कुंती महारानी को उन्होंने कहा दुर्वासा मुनि ने कि आपको भविष्य में इसकी बहुत आवश्यकता होगी, तो कुंती महारानी ने उस मंत्र को स्वीकार किया। फिर क्योंकि अभी वो छोटी थी, तो उनको ऐसा लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं कोई मंत्र पढूं और देवता आ जाए। मुझे एक बार परीक्षा लेनी चाहिए इस मंत्र की कि ऐसा होता है। मतलब अभी छोटी थी, उनके मन में ऐसा था नहीं कुछ भी कि ऐसा हो सकता है, फिर मैं क्या मांगूंगी देवताओं से। क्योंकि दुर्वासा मुनि ने उनको यह मंत्र इसलिए दिया था कि आगे भविष्य में चलकर इनको पुत्र उत्पन्न करने में बहुत कठिनाई होगी। तो वो बार बार है ना खिड़की से खड़े होकर सूर्य देव को देख रही थी। बोले, सूर्य भी तो एक देवता है, मैं मंत्र पढ़ती हूँ, देखती हूँ सूर्य भगवान आ रहे हैं या नहीं। तो जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ा, सूर्य देव प्रकट हो गया, और सूर्य देव प्रकट होकर फौरन उनको पुत्र दे दिया। पुत्र को देखकर कुंती महारानी तो बहुत विस्मित हो गई, बोला, मैं तो कुंवारी कन्या हूँ, मैं इस पुत्र को लेकर के कहाँ जाऊंगी, तो संसार में कितना लोक निंदा होगी मेरी। तब सूर्य देव ने कहा, क्योंकि ये भविष्य जो है वो पहले से निर्माण है, और ये पुत्र आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आपके कुंवारीपन को कोई भी इससे क्षति नहीं पहुंची, लेकिन अब मेरा ये कर्तव्य है कि आपने मुझे बुलाया तो मैं आपको पुत्र दूं। तो फिर उनको पुत्र देकर वो चले गए, और फिर उन्होंने लोक निंदा के डर से कि मेरे पिताजी की या मेरी संसार में कितनी निंदा होगी कि कुंवारी कन्या के यहाँ पुत्र कैसे, तो उन्होंने करण को गंगा जी में बहा दिया। उसके बाद हस्तिनापुर में उनका विवाह हुआ। विवाह के बाद जब एक बार उनके पति पांडव आखेट पर गए थे शिकार करने के लिए, तो उन्होंने एक हिरण पर तीर मारा, लेकिन वास्तव में वो हिरण और हिरनी नहीं थे, बल्कि दो ऋषि मुनि थे। एक मतलब उनकी ऋषि मुनि थी और उनकी पत्नी थी, जो आपस में संभोग कर रहे थे, क्योंकि वो उनका ये विचार था कि हमें, क्योंकि ये जो मनुष्य शरीर मिला है वो क्यों मिला है, भगवान की भक्ति करने के लिए, इसको अपवित्र नहीं करना चाहिए। तो वो हिरण के शरीर में आकर संभोग कर रहे थे, लेकिन क्योंकि महाराजा पांडव ने ये बात को जाना नहीं और उनको तीर से मार दिया, तो उन दोनों ने, यानी हिरण और हिरणी जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने इस महाराजा पांडव को श्राप दिया कि आप जिस समय अपनी पत्नी को स्पर्श करोगे उसी समय आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो उनको ये श्राप मिला, इसलिए वो शुरू से ही स्त्री सुख से वंचित हो गए। दो दो पत्नियां थी उनकी, लेकिन फिर वो सब छोड़ के हस्तिनापुर का राज जो है विदुर को देखकर तपस्या करने के लिए वन में चले गए। और वन में वो सदैव ऋषि मुनियों के आश्रम में रहते थे, कथा सुनते थे, भगवान की भक्ति करते थे और सोचते थे कि हो सकता है ये भक्तों का आशीर्वाद होगा, श्राप टल जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जैसा कि पांडव को श्राप मिला था कि वो पत्नी को स्पर्श नहीं कर सकता, तो फिर एक बार उन्होंने कुंती महारानी से कहा कि क्योंकि देवता सभी के शरीर पर रहते हैं, आपके शरीर पे भी रहते हैं, हमारे शरीर पे भी हैं, देवताओं का निवास तो समस्त अंगों पर होता है, तो मेरी इच्छा है कि आपको जो दुर्वासा मुनि ने मंत्र दिया है उसका प्रयोग करो और देवताओं के द्वारा पुत्र उत्पन्न करो, क्योंकि ये मेरा आदेश है, इसमें अधर्म नहीं है, क्योंकि देवता तो वैसे भी हमारे शरीर पर रहते ही हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर हमारा वंश जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा, हमारे वंश में कोई बचेगा नहीं, तो फिर आप ऐसा करो कि देवताओं को बुलाकर उनके द्वारा पुत्र उत्पन्न करो। कुंती महारानी ने साफ इनकार कर दिया, बोला मुझे पुत्र हो या ना हो, मैं भले ही पुत्रहीन रहूं लेकिन मैं ये कर्म नहीं कर सकती। परंतु जब पांडव महाराज ने बहुत बहुत आग्रह किया कि ये अधर्म नहीं है, अगर ये अधर्म है तो एक परीक्षा लेते हैं, तुम सबसे पहले धर्म राजा को बुलाओ, यदि तुम्हारा कर्म अधर्म होगा या धर्म के विपरीत होगा तो वो नहीं आएंगे, ये टेस्ट करो। तो कुंती महारानी ने अपने पति की बात मानते हुए सबसे पहले धर्मराज को बुलाया और धर्मराज के द्वारा उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ, युधिष्ठिर महाराज, और उनके जन्म के समय आकाशवाणी हुई कि ये धर्मात्माओं में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ होगा। यानी यहाँ पर यह सिद्ध हुआ कि उनका कार्य धर्म के विरुद्ध नहीं रहा हुआ। और फिर उसके बाद संसार ने देखा कि युधिष्ठिर महाराज के धर्म की ख्याति पूरे संसार में फैली और वो जहां भी रहे वहां पर धर्म का ही प्रचार हुआ। यहाँ तक कि जब अज्ञातवास में दुर्योधन आदि पता लगाना चाह रहे थे ना कि कहाँ पर छुपे हैं वो, तो ये पता लगा रहे थे कि कौन सी वो जगह है जहाँ पर धर्म का वास है, यानी कि कौन सी जगह है जहाँ पर धर्म हो रहा है, यानी जहाँ पर युधिष्ठिर महाराज होते थे वहां पर कोसों तक अधर्म नहीं हो सकता था। तो फिर जब उन्हें पता चला कि हाँ विराट राज जो है वो ऐसा राज्य है जहाँ पर केवल धर्म का कार्य हो रहा है, तो फिर वो लोग वहां पर गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, अज्ञातवास का समय समाप्त हो गया था। और युधिष्ठिर के बाद इनके एक बार फिर उन्होंने पवन वायुदेव को बुलाया जिनके द्वारा उनको भीम उत्पन्न हुए, और भीम के विषय में कहा जाता है कि वो उनके पास इतना बल था कि एक बार वो छोटे से थे, अभी गोद में ही थे, तो वो हंस रहे थे, कुंती महारानी अपने पति पांडव को दिखा रही थी कि कैसे हंस रहा है, तो अचानक से उनके हाथ से गिर गए, और वो क्योंकि जंगल में थे तो ऊपर खड़े थे, नीचे गिर गए चट्टान के ऊपर। वो सोचा, कुंती महारानी डर गई, सोचा कि अब जाहिर सी बात है इतना ऊपर से नीचे चट्टान के ऊपर गिरे हैं तो बच्चा छोटा होगा उसका क्या हाल होगा। लेकिन जब नीचे जाके उन्होंने देखा तो जिन चट्टान पे भीम गिरे थे वो चट्टान टूट गई थी, तो इतना उनके पास बल था। और उसके बाद इंद्र देवता को बुलाया जिनके द्वारा उन्हें अर्जुन प्राप्त हुए। तब पांडव महाराज ने कुंती महारानी को कहा कि अब आपके तीन पुत्र हो गए हैं, तो मेरी इच्छा है कि आप माधुरी के लिए मंत्र पढ़ो। तो फिर कुंती महारानी ने माधुरी के लिए मंत्र पढ़े और अश्वनी कुमार को बुलाकर उनके यहाँ नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। और कुछ समय के बाद देव इच्छा से पांडव की मृत्यु हो गई, और मृत्यु के बाद भी कुंती महारानी की यहाँ पर महानता दिखाई जाती है कि दोनों पत्नियों ने यह सोचा कि अब क्योंकि हम अपने पति के साथ सती हो जाते हैं, तो माधुरी ने भी यही सोचा और कुंती महारानी ने भी यही सोचा कि मैं ज्येष्ठ पत्नी हूँ तो मैं भी सती हो जाती हूँ। लेकिन माधुरी ने कहा कुंती महारानी को कि नहीं, अगर मैं जीवित रही क्योंकि जिनकी ऐसी प्रथा है कि जिनके बच्चे छोटे होते हैं वो पत्नियां जो हैं वो सती नहीं होती, क्योंकि उनको अपने बच्चों का पालन करना होता है। तो फिर कुंती महारानी को माधुरी ने कहा कि यदि मैं जीवित रही तो मैं आपके पुत्रों में और मेरे पुत्रों में भेद रखूंगी, मैं समदृष्टि से उनका पालन नहीं कर सकूंगी, लेकिन आप क्योंकि अत्यंत ही उत्तम गुणों वाली हो तो मेरे पुत्रों को भी अपने ही पुत्रों की तरह पालोगी, तो फिर आप मैं इच्छा है कि मैं सती हो जाती हूँ, आप हमारे पुत्रों की सुरक्षा के लिए यहीं पर रहो। और इस तरह वो जंगल में ही थे और उनके पति की मृत्यु हो गई और उन्होंने अपने जीवन में बहुत बहुत कष्ट देखे, बहुत बहुत कष्ट। कभी कभी उनको जैसे वहां से जंगल से जब उनको भीष्म पितामह लेकर भी आए तभी भी दुर्योधन आदि उनको कभी स्वीकार नहीं करते थे, कभी लाक्षागृह, कभी विष देकर उनको मारने का प्रयास करते, कभी किसी किसी तरह से प्रयास करते, उनको खांडवप्रस्थ दे दिया और उसके बाद जुआ खेल कर उनको वनवास में भेज दिया, अज्ञातवास में भेज दिया। बहुत बहुत कष्ट देखे कुंती महारानी और पांडवों ने अपने जीवन में, और अंत में इतना भयंकर युद्ध हुआ, युद्ध के बाद भी आज इतना बड़ा भयंकर उनके साथ घटना हो रही थी जिसमें अश्वत्थामा उनके संपूर्ण कुल को विनाश करने का प्रयास कर रहे थे। तो इन समस्त विपदाओं में भगवान श्री कृष्ण ने उनकी सहायता की, और जब कुंती महारानी ने ये रियलाइज किया कि कृष्ण के अतिरिक्त और कोई भी नहीं जिन्होंने हमें सहारा दिया हो, जिन्होंने हमारा साथ दिया हो, जिन्होंने हमारी सुरक्षा की हो, तो भगवान के लिए वो कुछ शब्दों का, प्रार्थनाओं का उच्चारण करने का इदमाह प्रथा इस तरह से कहना शुरू कर रही हैं। और वास्तव में कुंती महारानी इतनी सुंदर प्रार्थना करे भगवान से, वो हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे। कृपया आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं अपनी साधना और अपनी सेवा को अच्छे से कर सकूँ और गुरु और गौरंग को प्रसन्न कर सकूं। हरे कृष्ण।